विचार चल रहा है यजुर्वेदीय कठोपनिषद में द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली धर्मराज नचिकेता को आत्मतत्व का ज्ञान करा रहे हैं, स्वस्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। चतुर्थ मंत्र में कहा, जिस साक्षी चेतन के द्वारा जागृत कालीन समस्त पदार्थों का प्रकाशन होता है, स्वप्न पदार्थों का भी प्रकाशन होता है, वह साक्षी चेतन तुम्हारा स्वरूप है। सुषुप्ति में जाता है, वहां पर भी साक्षी चेतन का अस्तित्व रहता है। यद्यपि जागृत अवस्था में मनोवृत्तियां है, चक्षुर निमित्तक, सपनावस्था में चक्षु सहकृत नहीं है, पूर्व जागृत कालीन भोगजन्य संस्कार से संस्कृत मन के द्वारा वृत्तियां होती है स्वप्न में, तो ऐसी वृत्तियां सुषुप्ति में नहीं है। तो सुषुप्ति में यदि वृत्ति नहीं है तो फिर संस्कार कैसे होगा? संस्कार के बिना स्मरण नहीं होता है। जिस वस्तु का संस्कार पहले ना हुआ हो अंतकरण में, तो उस वस्तु का स्मरण नहीं होता है। लेकिन उठने के बाद, तो जागृत में लौटने के बाद स्मरण होता है। न किंचित अवेदिशम अहम सुखम अस्वापसम, इसका मतलब स्मरण हो रहा है इसलिए संस्कार जरूर होगा। और संस्कार हुआ तो फिर बिना वृत्ति से कैसे होगा? इसलिए वहां पर मनोवृत्ति न होने पर भी आविद्यक अविद्या की वृत्ति होती है। अविद्या की वृत्ति होने पर भी साक्षी उसको प्रकाशित करता है, अविद्या को भी और अविद्या की वृत्ति को भी, इसलिए संस्कार होता है। तो जिस साक्षी चेतन के द्वारा जागृत का भी प्रकाशन, स्वप्न का भी हो रहा है, सुषुप्ति का भी हो रहा है, वो साक्षी चेतन तुम्हारा स्वरूप है हे नचिकेता। और उस साक्षी चेतन को छोटा नहीं मानना है, इसलिए कहते हैं महांतम, वो बड़ा है। तो ये छोटा बड़ा ये तो उपाधि में है। जैसे आकाश के अंदर एक घड़ा रख दिया तो परिच्छिन्नता घट में है, आकाश में नहीं होती है, अपितु उपाधिगत परिच्छिन्नता को लेकर के घटावच्छिन्न आकाश में परिच्छिन्नता की भ्रांति हो जाती है। इसी प्रकार से दृष्टांत में, तो इस शरीर मनुष्य का होता है, पशु में जाएगा तो पशु का शरीर हो गया, देवता योनि में गया तो देवता का शरीर हो गया, लेकिन इस शरीर मनुष्य आदि का होने पर भी आत्मा ना मनुष्य है, ना आत्मा पशु है, ना आत्मा देवता है, परंतु शरीरगत उपाधिगत धर्मों को लेकर के अपने में आरोपित करता है। तो इसी प्रकार से शरीरगत सुख दुखादि को जैसे अपने में आरोप करता है, मनुष्यत्व आदि को जैसे अपने में आरोप करता है अज्ञानी, उसी प्रकार शरीर में परिच्छिन्नता का भी आरोप अपने में करता है। शरीर में भेद है, आत्मा में भेद नहीं होता है। घटादि उपाधि में भेद होता है, आकाश में भेद नहीं होता है। जो तार्किक लोग कहते हैं, संख्या आदि भी कहते हैं कि आत्मा नाना है, भाई आत्मा नाना है तो किसको देख करके आपने कहा कि आत्मा नाना है? आत्मा तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से। जब आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो फिर आत्मा में भेद का प्रत्यक्ष कैसे होगा? यदि आत्मा का प्रत्यक्ष मानेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय मानेंगे, तो आत्मा तो जड़ हो जाएगा, आत्मा दृश्य हो जाएगा। और यद यद दृश्यम तत्त अनित्यम, तत्त विनाशी, वो विनाशी हो जाएगा। तो आपको भेद दिख रहा है किसमें? उपाधि में भेद दिख रहा है। तो उपाधि में भेद दिख रहा है तो नाना फिर उपाधि में है, फिर चेतन में कैसे होगा? जैसे मान लो पर्वत में आपको धूम दिख रहा है, तो पर्वतीय धूम से आप पर्वतीय बनने का अनुमान कर सकते हैं। पर्वत में आपको धूम दिख रहा है, आप अनुमान करेंगे जलरथ में, तो नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद शरीर आदि में, तो भेद तो शरीर आदि में है। आप भेद को सिद्ध करते आत्मा में। जब धर्मी का आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो धर्म का प्रत्यक्ष कैसे होगा? आत्मा है धर्मी, और आत्मा में धर्म भेद की कल्पना करते हैं आप। जब आत्मा धर्मी का आपको जो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो यदि प्रत्यक्ष मानेगा तो विनाशी हो जाएगा, आत्मा दृश्य हो जाएगा। हाँ, यदि आरोपित करते हैं तो आरोपित जो भी होगा मिथ्या हो जाएगा, है ना? यदि आरोप यदि करते हैं शरीरगत भेद को लेकर के, शरीरगत जैसे सुख दुख को लेकर के आत्मा में सुख दुख का आरोप करते हैं, इसलिए सुखी परा दुखी परा कल्पित हो जाएगा। इसी प्रकार भेद का यदि आरोप करते हैं शरीरगत भेदों को लेकर के, फिर आत्मा का भेद क्या हो जाएगा? कल्पित हो जाएगा। ये तो हमको स्वीकार्य है। तो वास्तविक अभेद और कल्पित भेद किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, है ना? और वास्तविक अभेद कहेंगे और वास्तविक भेद भी कहेंगे तब तो नहीं बनेगा, है ना? इसलिए यहां पर धर्मराज सूचित करते हैं, जिस चेतन के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रकाशित होती है वो साक्षी चेतन छोटा नहीं है, वो अपरिछिन्न है, परिछिन्न नहीं है। परिछिन्नता तुम्हारी उपाधि में है, तुम्हारे में नहीं है। तो कहते हैं आत्मा यदि बड़ा है तो फिर आकाश की तरह बड़ा होगा जी? कहते नहीं। तो ये जो आत्मा है जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को सत्ता दे रहा है, इसी प्रकार आकाश को भी वही सत्ता देता है। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः। जैसे बाकी पदार्थों की उत्पत्ति होती है उसी आत्मा से, उसी प्रकार आकाश की भी उत्पत्ति होती है उसी आत्मा से। इसलिए यहां पर कहते हैं विभु, विभु मतलब सबका अधिष्ठान है। इस प्रकार तुम अपने स्वरूप को जानो। इसलिए यहां पर कहते हैं जो साक्षी चैतन्य हो गया, जो अपरिछिन्न हो गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देखो तो चेतन कहकर ज्ञान का उपदेश हो गया, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और महांतम कहने से अपरिछिन्न हो गया, अपरिछिन्न अनंतम न विद्यते अंतो यस्य अथवा यस्मिन, जिसमें किसी प्रकार का किसी प्रकार की परिछिन्नता ना हो, किसी प्रकार का परिच्छेद ना हो, जिसको कोई माप ना सके, ना देश माप सकता है उसको, ना वस्तु माप सकती है, ना काल माप सकता है, ऐसा त्रिविध परिच्छेद से रहित तुम्हारा स्वरूप है। और विभु कहने से अधिष्ठान हो गया, देखो सबको सत्ता वही देता है, इसलिए क्या हो गया सत्यम। अधिष्ठान हमेशा सत्य ही होता है, कल्पित पदार्थ कभी भी अधिष्ठान नहीं हो सकता है। तो जिसकी कोई सत्ता न हो पारमार्थिक, उस दूसरे को कैसे सत्ता देगा। इसलिए अधिष्ठान हमेशा पारमार्थिक होता है। इसलिए यहां पर जो पारमार्थिक सत्य है आत्मा का स्वरूप, उसको उपदेश कर दिया धर्मराज ने विभु शब्द से, विभु और वही तुम्हारा स्वरूप है आत्मानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये महावाक्य हो गया। देखो महावाक्य का जो विचार करेंगे तब तो जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होता है। पंचदशी में आप सुनते हैं ना महावाक्य विचारात अपरोक्ष ब्रह्म दी, अपरोक्ष ज्ञान का अभिव्यक्त होता है अंतकरण में महावाक्य का विचार करने पर। और अवांतर वाक्य का यदि परीक्षण करेंगे तो परोक्ष ज्ञान होगा। दो प्रकार के वाक्य आते हैं वेदांत में, एक महावाक्य होता है, दूसरा अवांतर वाक्य होता है। स्वरूप बोधकम वाक्यम अवांतर वाक्यम, ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाला, प्रतिपादन करने वाला वाक्य अवांतर वाक्य कहलाता है, और जीव ब्रह्म के एकत्व का बोध करने वाला वाक्य महावाक्य होता है। तो ये जीव ब्रह्म का एकत्व का ज्ञान कराता है। इसलिए यहां पर धर्मराज जी बोलते हैं जो सत है, जो चित है, जो अनंत है, आनंद है, वो तुम्हारा स्वरूप है। इस प्रकार स्वरूप की पहचान करा रहे हैं धर्मराज। मत्वा पहचान तो कराना पड़ता है जी, अपनी बुद्धि में बहुत तीव्रता हो, बहुत सूक्ष्मता हो, तो वेदांत का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। केवल बुद्धि की प्रतिभा से, बुद्धि की सूक्ष्मता से जब वेदांत का विचार करेंगे तो तमाम प्रकार के संशय हो जाते हैं, भ्रांति भी हो जाएगी, क्योंकि कुतर्क भरा रहता। देखो ये बुद्धि का बल क्या है, कुतर्क। बुद्धि जो हमेशा है ना, ये कुतर्क का आश्रय लेती है ना। इसलिए जो कहते हैं प्रज्ञामांदम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह विषयाशक्तिरित्येते ज्ञानस प्रतिबंधकाः, ये जो ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, कुतर्क कह दिया, प्रज्ञामांद्य बुद्धि की मंदता, तो बुद्धि की मंदता होने पर, बुद्धि कमजोर होने पर ज्ञान नहीं होता है। ये बात तो थोड़ी देर के लिए ठीक है ना, लेकिन बुद्धि की मंदता होने पर भी यदि बुद्धि में श्रद्धा हो, बुद्धि में जो श्रद्धा रूपी बल आ जावे तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, भी विचार करना चाहिए कि नहीं। बुद्धि आपकी कमजोर है लेकिन बुद्धि में जो श्रद्धा हो तो गुरु के प्रति शास्त्र के प्रति ज्ञान होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है प्रत्यक्ष राजा जनक जी का, तो राजा जनक जी में क्या है, देखो बुद्धि की मंदता तो है लेकिन श्रद्धा है, कुतर्क नहीं है, कुतर्क नहीं है, समझ में ना। शास्त्र जो बोल रहा है, गुरु जो बोल रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, कहते ना भाई श्रद्धावान लवते ज्ञानम, ये देखो श्रद्धा में ऐसी शक्ति होती है। बुद्धि कमजोर होने पर भी बुद्धि झट से पकड़ लेती है ना। हाँ, तो इसीलिए जैसे कि आप लोग बताते हैं, मान लो कि भाई कोई बढ़िया प्रवचन करता हो, कैसे प्रवचन ये करता है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, बढ़िया प्रवचन करता है इसके ऊपर। मान लो विषय रखा है ना, विचार का विषय रखा है प्रवचन के लिए कि जो अतिथि देवो भव, प्रवचन तो बहुत अच्छा करता है भैया, संस्कृत में भी करता हो मान लीजिए, है ना, वो भी साहित्यिक संस्कृत में करता हो, है ना, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है कि नहीं, पंडित जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो प्रवचन तो करता है बहुत अच्छी वाणी से, है ना, आजकल तो वाणी का चमत्कार है कि नहीं, तो तो चमत्कार को नमस्कार है, तो बहुत अच्छा प्रवचन तो करता है, देखो तुम्हारे घर में जो आएगा हाँ, वो देवता है, वो कैसा है, देवता है, देवता के रूप से पूजा करो, लेकिन उनके घर में जो आएगा तो निज दृष्टि से देखता हो, भिक्षा ना देता हो, है ना। और दूसरा कोई व्यक्ति है अनपढ़ है, कभी स्कूल ना गया हो लेकिन गुरु के पास आता हो, आश्रम में आता हो, आश्रम की सेवा करता हो, तो आश्रम की सेवा करने पर भी एक भावना है कि मैं गुरु की सेवा करता हूं, समझ में कि नहीं। देखो आप लोग विचार करो भाई, आप गुरु आश्रम में जाते हो, किसी की भी सेवा करो, मन में क्या भावना होती, मैं गुरु की सेवा करता हूं, भावना होती है कि नहीं। आज जब घर में आ जाते हैं तो भावना क्यों नहीं रहती है, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, होनी चाहिए और हो सकती है, हो सकती है, असंभव नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती है ना। चलो वो तो बाह्य प्रसंग है। तो मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है, गुरु के पास श्रद्धा है, गुरु के पास आता हो और जैसा बोलता है गुरुजी ऐसा ही करता हो, गुरु ने कह दिया कि तुम्हारे पास जो आता है वो देवता है, ब्राह्मण जो आता है वो देवता है, कोई भी हो अतिथि के रूप से जो आएगा वो देवता है, तो जैसा सुना ऐसा मानता है वो, और है अनपढ़, तो आप विचार कर लो किसको वास्तविक ज्ञान हुआ अतिथि देवों का, और किसको वास्तविक फल मिलेगा, जो अच्छा प्रवचन करता है तो उनको फल मिलेगा, जो चमत्कार करता है कि जो अनपढ़ जो व्यक्ति है मानता है उसको फल मिलेगा, समझ में आएगी नहीं। तो ये हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, फल उसी को मिलेगा, ये अच्छा प्रवचन करने वाले को फल नहीं मिलेगा, हो गए कि नहीं। इसी प्रकार से बुद्धि की मंदता होने पर भी श्रद्धा रूपी यदि बल है, ज्ञान उसी को होता है, तो जैसे ज्ञान का फल हो रहा है ना श्रद्धा से, उसी प्रकार कर्म भी समझना है, उसी प्रकार उपासना भी समझना है। तो श्रद्धा जिस प्रकार आपकी होगी उसी प्रकार फल भी मिल जाएगा, हो गया ना। इसलिए जिस व्यक्ति में श्रद्धारूपी बल है उसको जल्दी पहचान करा सकते हैं आत्म तत्व की, इसलिए पहचान करानी पड़ती है। इसी प्रकार देखो नचिकेता में श्रद्धारूपी बल है ना, तो ये केवल कहानी मात्र नहीं है। उसी प्रकार हम नचिकेता की तरह है क्या? यदि नचिकेता की तरह नहीं है, बुद्धि बहुत तेज हो भी गई है मान लो, कभी कभी जो है ना ये माया ठग लेती है। कैसे ठग लेती है? ठग लेती है, देखो हम इतने दिन से सुन रहे हैं वेदांत, तुम लोग तो अभी आ रहे हो, होती नहीं होती है ना। कोई पुराना जो स्वाध्यायी है उसके मन में ये अभिमान आ जाता है, हम इतने दिन से सुन रहे हैं, तुम तो अभी आ रहे हो, तो ये भी माया का खेल है। माया किस रूप से ठग देगी हाँ कल्पना नहीं कर सकते, देखो है ना। इसलिए कभी कभी और ये जो ज्ञान का भी बुद्धि का भी अभिमान आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर धर्मराज जी पहचान कराते हैं, जो साक्षी चेतन है, जो सबको सत्ता दे रहा है, वो तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए आत्मानं मत्वा, उसको यदि अपना स्वरूप समझ लिया अपरोक्ष रूप से, उसी को ही ज्ञान का फल मिलता है। ये कह दिया उसका फल क्या है ज्ञान का, धीरह ना सोचति, किसी प्रकार का शोक नहीं होगा। शोक का जब हेतु नहीं रहा, शोक का हेतु है द्वैत, द्वैत भान, परिच्छिन्नता, अपने आप को परिच्छिन्न समझ रहे हैं। आत्मा शरीर के अंदर है कि बाहर भी है? आत्मा तो दोनों तरफ है, देखो आत्मा शरीर के अंदर भी है, जैसे आकाश घट के अंदर भी है, घट के बाहर भी है, लेकिन अविद्या के कारण अध्यास हो जाता है शरीर में, इसलिए शरीर परिच्छिन्न होने के कारण अपने को परिच्छिन्न समझ लेता है। जब परिच्छिन्न आत्मा हो गया तो द्वैती हो गया, और क्या अनेक आत्मा हो गए, है ना। तो श्रुति बोलती है द्वितीयाद वही भयो भवति, है ना, कि द्वैत बुद्धि से भय होता है, भय का है तो द्वैत। तो द्वैत ज्ञान समाप्त हो गया तो त्रिविध दुख, कारण की निवृत्ति हो जाने पर कार्य की निवृत्ति हो जाती है। कारण भय का कारण हो गया द्वैत ज्ञान, और द्वैत ज्ञान का कारण हो गया अज्ञान, तो अज्ञान की निवृत्ति होने पर द्वैत ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। द्वैत ज्ञान की निवृत्ति मतलब द्वैत ज्ञान का बात, इसको कहते हैं बात। तो कारण निवृत्ति पूर्वक यदि कार्य का नाश हो जावे तो उसको कहते हैं बात, समझ में ना भाई। ऐसे मान लो मिट्टी से घड़ा बना हो और घड़े को फोड़ दिया डंडे से, तो घड़े को फोड़ दिया तो घट का जो कारण है मिट्टी वो है कि नहीं, है ना। तो मिट्टी की निवृत्ति नहीं हुई, देखो मिट्टी तो पहले से फोड़ने के बाद ही मिट्टी है, तो उसको घट का नाश कहा जाएगा, घट का बात नहीं कहा जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन रस्सी में आपको सर्प दिख रहा है और आपको ये ज्ञान हो गया कि यम रज्जु हो नायम सर्प, तो सर्प दिख रहा रस्सी का अज्ञान से, और रस्सी का यदि ज्ञान हो गया तो कौन सा ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। रस्सी को ठीक से प्रकाश लगाकर देखा दी, देख दिया, देख लिया तो रस्सी का अपरोक्ष ज्ञान होगा तो रस्सी का अज्ञान नहीं रहेगा। तो रस्सी के अज्ञान निवृत्ति पूर्वक सर्प का नाश हो गया, इसको कहेंगे बात। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाता है अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान, तो कैसा ज्ञान, आत्मान मत्व, देखो वो जो ब्रह्म है वो मेरा स्वरूप अहम अस्मि ब्रह्म, ये देखो अपरोक्ष ज्ञान हो गया। इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत ज्ञान का नाश होगा कि बाद होगा जी, बाद हो जाएगा, होगी कि नहीं। तो ज्ञान हो जाएगा तो अपने माता को नमस्कार करेगा कि नहीं, बोलेगा नहीं तुम तो जो है ब्रह्म हो, मैं ही ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, कौन किसको नमस्कार करेगा, ऐसा बोलेगा जी? ऐसा नहीं बोलेगा। जैसे अज्ञान अवस्था में नमस्कार कर रहा है माता पिता को, गुरु को, संबंधी को, ऐसा ही नमस्कार करेगा, लेकिन भावना बदल जाएगी, है ना। पहले तो द्वैत को सत्य समझ करके, है ना, मैं अलग हूँ, माता पिता अलग है, ईश्वर वैकुंठ में है, ये सब द्वैत बुद्धि को सत्य समझ रहा है ना। तो ज्ञान होने पर सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है, बस इतना है ज्ञान का फल, दूसरा कोई ज्ञान का फल नहीं है, हो गया ना। ज्ञान का फल तो मोक्ष भी नहीं है, मोक्ष तो वे नित्य मोक्ष है। वेदांत के मुक्ति कैसी होती है? नित्य मुक्ति है। जैसे आपको रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति कैसी होती है? आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति मतलब पहले भी सर्प नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है, समझ में आ गया। तो इसको कहते त्रैकालिक निवृत्ति। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है उनको ये नित्य मुक्ति है। मेरे में बंधन पहले भी नहीं और अभी भी नहीं और आगे भी नहीं। तो आत्यंतिक त्रैकालिक बंधन की निवृत्ति ये ब्रह्म ज्ञान का फल है, समझ में आ गया नहीं। और जो साक्षात्कार कहते हैं आनंद की अनुभूति, वो तो नित्य है ना। तो ये समझ लो, इसलिए यहां पर कहते हैं जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया कि वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है, अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उनको द्वैत में सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। और द्वैत में सत्यत्व बुद्धि होने पर जो दुख की अनुभूति हो रही है, हो रही थी, वो दुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन ना सोचती और दुख से आक्रांत नहीं होता है। आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, ये जो त्रिविध दुख कहते हैं ना, तो त्रिविध दुख की निवृत्ति आत्यंतिक हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पहचान कराते हैं, और भी आगे पहचान कराते हैं। देखो आप लोगों को बता दिया कि महावाक्य का विचार करते हैं तो अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो जो आपका महावाक्य है तत्त्वमसि, उसका यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है। व्याख्यान श्लोक के माध्यम से नचिकेता को उद्देश्य करके सारा साधक के लिए उपदेश किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है महावाक्य का, तत्त्वमसि का। तो देखिए जी, पंचम मंत्र में य इमं मध्वजं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैत। देखो यही तत्व है इसके विषय में तुमने पूछा था। तो कैसा तत्व है? कहते हैं जो परमात्मा है ना, जिसने सृष्टि किया, और जिसने सृष्टि किया शरीर आदि को, शरीर के साधन को, भोग आदि को सृष्टि किया ना, वही परमात्मा शरीर में प्रविष्ट हो गया, और शरीर में प्रविष्ट हो गया और शरीर में अहमता हो गई, तब क्या बन गया? भोक्ता बन गया। ऐसा हो जाता है, सपनों में एक शरीर दिखा और शरीर में आपने अहमता कर लिया, आप कैसे बन गए? सपना के भक्ता बन गए। ये देखो कह रहे हैं मध्वदम इमं वेद, मधु, मधु मतलब कर्म का फल। ये पुण्य का फल कैसा होता है? मीठा। पुण्य का फल सुख है, है ना। सबसे मीठा कौन है संसार में? भाई सुख है, है ना। और वो जो वास्तविक मीठा कहाँ पर है वो बात अलग चीज है, है ना। लेकिन सुख को ही वास्तविक मीठा सब समझते हैं। रसगुल्ला खाते हैं, विचार कर देख ली, रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला क्यों खाते हैं जी? सुख के लिए खाते हैं, हो गया ना। तो सुख कहाँ से आता है वो बात अलग चीज है, लेकिन सुख को सब इष्ट मानते हैं, है ना। सुख में इष्ट प्रकारक बुद्धि होती है, इसलिए सुख का साधन रजगुल्ले में इष्ट प्रकारक बुद्धि होती है। यदि सुख में यदि इष्ट बुद्धि ना होती तो रजगुल्ले में इष्ट बुद्धि नहीं होती है, हो गए कि नहीं। इसी प्रकार पति का प्रेम होता है पत्नी से, पत्नी का प्रेम होता है पति से, पुत्र से भी होता है, तो काहे के लिए प्रेम करता है कि नहीं भी? काहे के लिए प्रेम होता है? हाँ कि नहीं, इससे मुझे सुख मिलेगा। ये बुद्धि हो रही है इष्ट बुद्धि पहले सुख में, है कि नहीं भी? इसीलिए सुख का जो साधन है उसमें ही बुद्धि हो जाती है। इसलिए इष्ट प्रकारक बुद्धि का विषय दो, तो इष्ट प्रकारक बुद्धि का विषय हो गया सुख पहला, इसलिए सुख का साधन में भी इष्ट बुद्धि हो जाती है ना। लेकिन अविद्या के कारण ये समझता है इसी से हमको सुख मिलेगा, लेकिन सुख तो भाई आत्मा का स्वरूप, रसगुल्ले में सुख नहीं है, है ना। यदि रसगुल्ले आदि में सुख होता, अन्यत्र ना होता, तो सुषुप्ति में भैया सुख नहीं होना चाहिए। सुषुप्ति में जो सुख होता है उसमें कोई भी विषय नहीं है, तो वहां पर जो सुख हो रहा है निर्विषयक सुख, निर्विषयक, बिना विषय से सुख हो रहा है, बिना साधन से सुख होता है। देखो जब अविद्या के कारण इस शरीर में जब अहमता हो गई तो फिर सुख ढूंढ लेता है, अच्छा रूप देखता तो सुख मिलता है, अच्छा रूप बढ़िया बढ़िया रूप को देखा, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सुंदर कपड़ा है। काशी में जाएंगे ना घाट पर, दोनों तरफ साड़ी टांग देते हैं दुकान में, साड़ी हाँ, बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी को देख कर माता जो है ना प्रसन्न हो जाती, माता अधिकतर साड़ी को देख करके, है ना। और दुकान वाले भी लुभाते हैं, अंदर साड़ी कैसी भी हो बाहर बढ़िया बढ़िया साड़ी टांग देंगे, है ना। और पति के पास पैसा हो या ना हो, पत्नी बोले हमको तो वही साड़ी चाहिए, आप चुरा कर लाओ कहीं से भी लाओ पैसा, है ना। हाँ ये माया का खेल ऐसा ही है। तो देखो तो ये अविद्या के कारण शरीर में जब अहमता हो जाती है तो मधु जो है पुण्य का फल सुख उसको भोग लेता है, तो भोग लिया तो भोक्ता हो गया और क्या। और भोक्ता जब हो गया और भोग क्या करेगा भाई, ये भोग जो है ना ये जहर को छोड़ेगा, जहर को पहले आपको बता दिया ना, जहर को छोड़ेगा। क्या जहर? संस्कार। बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला है ना, ये जो सोहन बुद्धि है सोहन संस्कार, ये हो गया जहर, है ना, ऐसा है। तो देखो कहते हैं तो ये जीव बन गया, जिसने शरीर को पैदा किया और जिसने शरीर में अहमता कर दिया तो भोक्ता बन गया, वो जीव हो गया, ये कह रहे। तो इमम मध्यतम आत्मानम वेद जीवम, ये जीवात्मा है, जीवात्मा हो गया। और इस जीवात्मा का स्वरूप क्या है पहचानेगा, पहचानना चाहिए। जब अपने आप को आप जीव मान लिए, है ना, और देखो वो परमात्मा क्या हो गया, जो फल दे रहा है वो ईश्वर हो गया, हो गया कि नहीं। ईश्वर भाई किसके लिए है? जीव के लिए ईश्वर। आप अपने आप को जीव मानते हैं इसलिए परमात्मा क्या हो गया? ईश्वर हो गया। अब देखिए ईश्वर हो गया, है ऐसा है। तो ईश्वर है ये किसके लिए है? नास्तिक के लिए है कि आस्तिक के लिए? ये आस्तिक के लिए ईश्वर है, हो गया ना। जैसे शास्त्र आस्तिक व्यक्ति के लिए, और आस्तिक में भी दो कोटि डालो, है ना, आस्तिक में भी दो कोटि है, एक साधक है और एक ज्ञानी है, हो गया ना। तो ईश्वर भाई ज्ञानी के लिए ईश्वर भाव है कि जो है साधना जो करता है, हाँ, मुमुक्षु के लिए समझ लो, है ना। तो हाँ, जो साधक अपने आप को जीव समझ रहा है, जो अपने आप को मुमुक्षु समझ रहा है, श्रवण आदि में प्रवृत्त होता है, स्वर्ग आदि को चाहता है, ब्रह्मलोक को चाहता है, वो सब साधक हो गए कि नहीं। तो साधक जो अपने आप को जीव समझ रहा है तो उसकी दृष्टि से परमात्मा क्या हो गए, ईश्वर हो गए, ठीक है ना भाई। वो तत्पथ का वाच्यार्थ हो गया, वाच्यार्थ हो गया है ना। जो अपने आप को जीव समझ रहा है, साधक समझ रहा है, वो तम पद का वाच्यार्थ हो गया। और तम पद का जब वाच्यार्थ हो गए तो परमात्मा क्या हो गया, तत्पद का वाच्यार्थ हो गया है ना। तो वाच्यार्थ जो हो गया वो हो गया ईश्वर, फल देने वाला है ना। तो ये कह रहे आगे कि ईशानम भूत भव्यस्य, ये ईश्वर है ना, ये भूत भविष्यत वर्तमान ये सबका शासक, त्रिविध काल का वो शासक है ना। ये जीव काल का शासक नहीं हो सकता है, परमात्मा जो ईश्वर है ना वो काल का शासक, वो महाकाल, महाकालेश्वर हो गया है ना। तो देखो वो तत्पद का वाचर्थ हो गया, उसको जो नजदीक से जानता है, अंतिकात मतलब समीपात, ईश्वर को जो समीप से जानता, ईश्वर को समीप से जानता मतलब क्या, मान लो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए बांसुरी लेकर के, तो आपने ईश्वर को नजदीक से जाना कि नहीं जाना, पर सामने जब खड़े हो गए। कहते हैं शास्त्र नजदीक से नहीं जाना, हो नजदीक से नहीं जाना, हो अभी दूर से ही जानता है भाई। सामने जब खड़े हो गए नजदीक से कैसे जाना, कैसे नहीं जाना। आप विचार कर लो, परमात्मा आपके सामने खड़े हो गए तो परमात्मा आपके लिए दृष्ट दृश्य हुआ कि चेतन हुआ, है कि नहीं भैया। परमात्मा खड़े हो गए, परमात्मा का दर्शन किसने किया, हमने किया, तो आप तो चेतन हो गए, दृष्टा हो गए। अब परमात्मा क्या हो गया, दृश्य हुआ कि दृष्टा हुआ, परमात्मा दृश्य है क्या है, परमात्मा दृश्य नहीं है। अब परमात्मा जब दृश्य मानेंगे तो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, हो गया कि नहीं। फिर आपने फिर परमात्मा को नजदीक से जाना कहा, नहीं जाना है ना। आप लोग जानते ना भाई कि नामदेव जी थे, नामदेव जी ना भाई, नामदेव के साथ भगवान जो है विट्ठल जी साथ में खाते थे, खेलते थे, सोते थे, सब कुछ करते थे, हो गए कि नहीं। और एक बार जब नामदेव जो कहीं गए, किसी शास्त्रार्थ आदि में कहीं चर्चा में गए, उसको किसी ने अपमानित कर दिया भाई, कुम्हार ने, है कि नहीं, घोरा कुम्हार ना, ऐसे जो है सर पर कैसे थापी मार दिया, तो जो उनको गुस्सा आ गया, देखो इतना अपमानित करते हो, देखो साधु को। उन्होंने कहा कि ये तो अभी तो कच्चा है, पक्का नहीं है, देखो। फिर नामदेव जो रोते रोते आए भगवान के पास, देखो हमारा इतना अपमान कर दिया। भगवान ने कहा ठीक तो कहा, अभी तुम कच्चे हो, कहां पक्के हो, कैसे तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भोलेपन से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे साथ खाता हूं, पीता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी तुमने मुझे जाना कहां अभी तक, ये बताओ। नामदेव बड़ा आश्चर्य होता, आपको नहीं जाना, नहीं जाने, तुम मुझे देखते हो तो मैं दृश्य हो गया भाई, मैं दृश्य तो ही नहीं। फिर उपदेश करे, उपदेश करना मेरा काम नहीं है, भगवान ने कहा है ना। हाँ तुमको मैं सब कुछ कर सकता हूं हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं करा सकता। बड़ी विलक्षण बात है कि नहीं, देखो भगवान भी जो है भक्त को ज्ञान नहीं करा सकते। हाँ गुरु जब गुरु में शरणागति जब नहीं होगा, गुरु जब तक नहीं मानेगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तो ठीक हो तो प्रसंग है कि गुरु के पास भेजे तब ज्ञान हुआ उनको है ना। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं धर्मराज अंतिकात, परमात्मा को नजदीक से जानना चाहिए, स्वरूप से जानना चाहिए। स्वरूप से तब जानेंगे, नाम और रूप में जो आपका मोह है, परिच्छिन्न में जो आपका मोह है, परिच्छिन्न में सत्तत्व बुद्धि होने के कारण जब अपने आप को परिच्छिन्न मानते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए तत्पद का लक्षार्थ को पकड़ो, तम पद के लक्षार्थ को पकड़ो। इसीलिए ये वेदांत की जो चर्चा होते है ना, जो शुद्ध चर्चा होती है, तो उसके लिए हैं उसी प्रकार का जो है साधु संगम की आवश्यकता पड़ती है, अच्छे गुरु के पास जाना पड़ता है, नहीं तो वेदांत के वास्तविक रहस्य को आप नहीं पकड़ सकते। इसलिए आप लोगों को बता दिया कि हमारी बुद्धि में बहुत सूक्ष्मता है, इसलिए वेदांत को पकड़ लेंगे। ऐसी बातें होती है कि केवल शास्त्र से शंका का समाधान नहीं होता है, ओके कि इसलिए यहां पर कहते हैं कहीं आत्मा शब्द आएगा, कहीं ब्रह्मा शब्द आएगा, कहीं ईश्वर शब्द आएगा, है ना। तो वहां पर ये विचार करना पड़ता है कि भाई वाच्यार्थ को लेना है कि लक्ष्यार्थ को लेना है, ये समझना पड़ता है, है ना। जैसे मान लो भाई अब ब्रह्म सूत्र आप लोग सुनते हैं, है जन्माद्यस्य यतः, है कि नहीं भैया, यतोवा इमानी भूताने जानते। तो ये जो लक्षण हुआ भाई, ये शुद्ध ब्रह्म का लक्षण हुआ, निर्विशेष ब्रह्म का लक्षण हुआ, कि सविशेष ब्रह्म का लक्षण हुआ भाई, है किसका लक्षण हुआ, सविशेष ब्रह्म का लक्षण हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म का लक्षण हुआ। यदि आप सविशेष ब्रह्म का लक्षण करेंगे तो फिर ज्ञान कराना किसका, निर्विशेष का कराना है कि सविशेष का। भाई जिसका ज्ञान कराना है उसी का नाम लक्षण करना चाहिए भाई, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, देखो ब्रह्म का विचार करना चाहिए। तो किस ब्रह्म का विचार करना चाहिए, निर्विशेष का करना चाहिए कि सविशेष का। तो निर्विशेष का करना, जिसका ज्ञान करना आपको उसका विचार करना है, ओके कि नहीं। तो प्रतिज्ञा कर दिया कि अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार करना चाहिए साधक को, साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी को, है ना। तो प्रतिज्ञा कर दिया शुद्ध ब्रह्म का विचार करना चाहिए, आप लक्षण करेंगे ये सविशेष ब्रह्म का तो होगा। तभी लक्षण पर किसका है, जन्मादेश यतः, शुद्ध ब्रह्म का ही है, समझेगी नहीं। किसका लक्षण है, शुद्ध ब्रह्म का ही लक्षण है, सविशेष ब्रह्म का भी लक्षण, दोनों का लक्षण हो जाएगा। प्रक्रमाया तो जो ही शुद्ध ब्रह्म है ना, तो माया को लेकर क्या हो गया, जगत का कारण हो गया। तो जिस समय जगत का कारण हो गया, उसमें शुद्ध ब्रह्म कहीं गया क्या, कहीं गया नहीं ना, आ गया समझ में, है ना। इसलिए आप लोगों को बता दिया, जो व्यक्ति अपने आप को साधक समझता है उसको ज्ञान कराना है, जो व्यक्ति जगत को कार्य समझता है ना, उसको ज्ञान कराना है ना। इसलिए जगत यदि कार्य समझ रहे हो जगत को, तो परमात्मा क्या हो गए, कारण हो गए, हो गए कि नहीं। अब परमात्मा जब कारण होगा तो किसको लेकर कारण, माया को लेकर कारण हो गया, हो गए कि नहीं। तो माया को लेकर जो परमात्मा कारण हो गए, उसमें शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप कहीं गया क्या, जिस समय परमात्मा माया को लेकर के जगत का कारण है उसमें भी वो कारण नहीं है, उसमें भी शुद्ध ही हो, है ना। इस बात को समझना बड़ा कठिन होता है कि नहीं। तो जहां पर ये शुद्ध ब्रह्म का लक्षण कहा जाता है, वो कारणत्व को छोड़ करके कहा जाता है, किसको छोड़ करके, हाँ कारणत्व को छोड़ करके शुद्ध ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा। और कारणत्व को लेकर के जो माया को लेकर कारणत्व हो गया, वो हो गया ईश्वर का लक्षण, सविशेष का लक्षण हो गया, समझ में आएगी नहीं। इसी बात आनंदाधि एव खलु युवानी बताना जानते, ये न जाता न जीवनते। देखो आनंद ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हो गई, तो आनंद ब्रह्म भाई शुद्ध ब्रह्म है कि ईश्वर है, सविशेष है, दोनों है, समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर वेदांत के रहस्य को समझना पड़ता है, किस प्रसंग से कहा जा रहा है, मान लग भाई भोजन के पंगत चल रही है और राजा बैठा है और भोजन में नमक कम है, तो राजा ने कह दिया कि सैंधवम आनय, है कि नहीं भाई। तो सैंधव का अर्थ क्या है, नमक भी होता है घोड़ा भी होता है, दोनों होता है कि नहीं होता है, हाँ? तो किसको, घोड़े को लाएगा कि नमक को लाएगा, घोड़े को लाएगा नमक कौन सा सही है। यद्यपि सैंधव के दो अर्थ है, हो गए कि नहीं, है ना। तो प्रसंग के अनुसार तात्पर्य का ज्ञान होता है, है ना। और तात्पर्य ज्ञान के बिना आप सुनते रहो शब्द के अर्थ, वाक्य के अर्थ का ज्ञान आपको होगा नहीं, हो गया कि नहीं। इसलिए वाक्यर्थ ज्ञान में तात्पर्य ज्ञान को कारण माना जाता है। प्रसंग क्या चल रहा है, लड़ाई का प्रसंग चल रहा है कि भाई पंगत भोजन का प्रसंग चल रहा है, तो भोजन का प्रसंग चल रहा है तो घोड़े को थोड़ी लाएगा, नमक को लाएगा, आगे सच में। इसी प्रकार से तत्त्वमसी कह दिया तुम वही हो, हो गए कि नहीं। भाई मैं कैसे वही हो सकता हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अल्प शक्तिमान हूँ, सुखी दुख हूँ, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, समझे कि नहीं। इसका मतलब तत्पद के वाच्यार्थ को लेकर नहीं कहा जा रहा है, तत्पद के लक्ष्यार्थ को लेकर कहा जा रहा है, समझ में ना। इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म कह दिया भाई, है ना। तो अहम के अर्थ तो दो है, अहम का अर्थ वाच्यार्थ लेंगे तो सविशेष हो जाएगा, शरीर को लेकर लेंगे तो वाच्यार्थ सविशेष हो गया, अंतकरण को लेंगे तो सविशेष हो गया आत्मा का अहम का अर्थ, इसको लेकर के ब्रह्म नहीं कहा जा रहा है, समझ में कि नहीं। अपने आप को पहले विवेक कर दो, आपका विवेक प्रकरण चल रहा है ना पंचदशी में, है कि नहीं। पहले विवेक करना पड़ता है, विवेक आत्मा अनात्मा का विवेक, है ना। मैं जैसे घटपटादि से अलग हूं, उसी प्रकार अंतकरण मन बुद्धि से भी अलग हूं, ये पहले विवेक करना पड़ता है। इसलिए साधन चतुष्ट में पहली संपत्ति, सबसे पहला धन क्या है, विवेक बताया कि नहीं। देखो विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य को रट रहे रटने मात्र से वैराग्य नहीं होता। मैं बहुत बड़ा विरक्त हूं तो वैराग्य नहीं आ जाएगा उससे, है ना। इसलिए सबसे पहले बड़ा साधन क्या है, विवेक, है ना। तो घटपट आदि से मैं जैसे भिन्न हूं, उसी प्रकार शरीर मन बुद्धि से मैं अलग हूं, ये पहले निर्धारण करो। तो निर्धारण कर दिए तो अमर्थ क्या हो गया, शुद्ध हो गया। देखो लक्षार्थ, इसी को कहते हैं लक्षार्थ, हाँ। लक्षणा वृत्ति से जिसका ज्ञान होगा, जिस अर्थ का, उसको कहते हैं लक्षार्थ। इसलिए अहम अर्थ जो लक्षार्थ है, उसका पहले निर्धारण करो, विवेक आत्मा अनात्मा का, हो गया कि नहीं। तो अहम अर्थ जो लक्षार्थ, ये शुद्ध ब्रह्म हो गया, देखो शुद्ध चेतन हो गया, है ना। इसी प्रकार कहीं ब्रह्म शब्द आएगा भाई, तो कहीं ब्रह्म शब्द आएगा तो जगत का कारण को लेकर के सविशेष हो गया, हो गया कि नहीं। ये तो वाई माने भूता ने जानते कह दिया, अंत में कह दिया तद विजिज्ञास स्वतद ब्रह्म, हो गया कि नहीं। तो ब्रह्म शब्द से यदि वाचार्थ लेंगे तो ईश्वर हो गया, जगत का कारण हो गया, है ना। लेकिन ज्ञान कराना है लक्षार्थ का ज्ञान कराना, इसलिए माया को लेकर के, जगत कार्य को लेकर के ईश्वर में जो कारणत्व आ रहा है, हो गया कि नहीं। वो कारणत्व की जब निवृत्ति हो जाएगी, आपको जो ये ज्ञान हो गया कि जगत जो दिखाई दे रहा है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, जैसे घटपटादि घट, घट का नाम और घट का रूप मिट्टी से अलग नहीं है, तो मिट्टी किसका कारण होगा, किसी का कारण नहीं है, फरमाया कि नहीं। इसी प्रकार से आपको ये निश्चय हो जावे कि जगत दिखाई देने पर मात्र से ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ये यदि आपको निश्चय हो गया तो ब्रह्म किसका कारण होगा जी, भाई कार्य हो तो कारण कहेंगे इसको, है कि नहीं। ये वेदांत रहस्य है। तो ब्रह्म में जब कारणत्व नहीं आया तो ब्रह्म कैसा होगा, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो शुद्ध चेतन तत्पद का लक्ष्यार्थ, और इधर तम पदार्थ लक्षार्थ शुद्ध चेतन, दोनों में एकत्व है, कोई विरोध नहीं है। तो लक्षार्थ में एकत्व और वाच्यार्थ में भेद, कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं है, हो गया। ब्रह्म शुद्ध भी है और ब्रह्म सविशेष भी, तो काय को विरोध है? माया को लेकर ब्रह्म जगत का कारण है और माया को छोड़ने पर, जगत कार्य को छोड़ने पर ब्रह्म शुद्ध है, तो काय को विरोध है? तो शुद्ध ब्रह्म पारमार्थिक है, ठीक है भाई। और का जो माया को लेकर के जगत ईश्वर हो गया, कारण हो गया, वो कल्पित हो गया। ब्रह्म कल्पित नहीं कह रहा, ब्रह्म में जो कारणत्व है वो कल्पित हो गया है ना। तो कल्पित पदार्थ और पारमार्थिक पदार्थ में कोई विरोध नहीं होता है ना। जैसे पर्दा पारमार्थिक है और पर्दा में अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है, तो अग्नि का विरोध है क्या पर्दा के साथ? कोई विरोध नहीं है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर समझ लो है ना, तत् और तम पद का जो लक्षार्थ है वो एक है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसा समझना ही वास्तविक समझना है। ये कह रहे देखो, इसी को नजदीक से समझना। ईशानम भूत भवस्य, समस्त कालों का शासक जो परमात्मा ईश्वर है, उसका जो लक्षार्थ है शुद्ध ब्रह्म, उस शुद्ध ब्रह्म को जो मैं के रूप से जानता है, अहमस्मि ब्रह्म के रूप से जानता है, तो क्या होगा इसका फल? ततः न भी जुगुप्सते, किसी की अपने को किसी से भी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है। पर्दे में अग्नि जलती हुई दिखती है तो अग्नि से पर्दे का कोई विरोध है क्या? अग्नि से रक्षा करेगा क्या पर्दा? नहीं करेगा भाई। जो सबको सत्ता दे रहा है, जो सबकी रक्षा करता है, तो अपने आप की रक्षा क्यों करेगा वो? अगर अग्नि कितने में जलती हुई दिखे पर्दे में, उस अग्नि से पर्दे का कोई नुकसान नहीं होता है ना। और दूसरी बात है देखो है, कि आकाश यदि किससे नाराज हो जावे, है कि नहीं भी? आकाश मान लो किसी से नाराज हो जावे तो कहां फेंकेगा वो? आकाश फेंकेगा तो कहां? आकाश में ही रहेगा, है कि नहीं? इसी प्रकार जो आत्मरूपी जो पर्दा है, वो सबको जब सत्ता दे रहा है, वो किसी से नाराज हो सकता है ना? नाराज नहीं हो सकता है। जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है ना, उनमें किसी प्रकार की जो घृणा भाव, किसी प्रकार की रक्षा का भाव नहीं आ सकता है। आप लोग सुनते इस आवश्यक में क्या है? हा, कि सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न भी जुगुप्सते। सर्वत्र जो परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा में सबका दर्शन करता है, उनमें किसी प्रकार की घृणा भाव, किसी प्रकार की भय का भाव नहीं आ सकता है। ये होगा ज्ञान का फल। इसलिए यहां पर लिखते हैं ततः, उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होने जाने पर न भी जुगुप्सते, अपने आप की रक्षा वो नहीं करता है। और यही आत्म तत्व है, एतत् वै तत्, जिसके विषय में तुम्हारे मन में शंका हो रही थी, संशय हो रहा था देवता को भी, वही आत्म तत्व यही है। बस इतने में रखते हैं, आगे का विचार कल करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।